एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में स्वागत। आज हम बात करेंगे जोनाथन फ्रेंजन के एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण उपन्यास फ्रीडम पर। ये 2010 में आया था।
हाँ, और फ्रेंजन तो जाने ही जाते हैं अपने बड़े परिवारों पर केंद्रित उपन्यासों के लिए, जैसे द करेक्शंस था जिसे नेशनल बुक अवार्ड मिला था।
बिल्कुल, फ्रीडम उसके लगभग 9 साल बाद आया और आते ही मतलब काफी हलचल मचा दी थी इसने। टाइम मैगजीन के कवर पर थे वो ग्रेट अमेरिकन नॉवेलिस्ट के टाइटल के साथ।
जी, और ये उपन्यास उस दौर के अमेरिका को दिखाता है जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट थे, इराक युद्ध चल रहा था, पर्यावरण को लेकर चिंताएं थीं, वो पूरा माहौल।
सही, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों के उतार चढ़ाव और सबसे जरूरी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के विचार को थोड़ा गहराई से समझें। यही तो उपन्यास का केंद्र है ना?
बिल्कुल। कहानी शुरू होती है सेंट पॉल मिनेसोटा में। बगलैंड परिवार है, वॉल्टर, पैटी और उनका बेटा जॉय।
और बाहर से देखने पर
बाहर से तो एकदम परफेक्ट लगते हैं, उदारवादी, पढ़े लिखे, पर्यावरण की फिक्र करने वाले, मतलब आस पड़ोस के लिए एक मिसाल, जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक है।
लेकिन फ्रेंजन की खासियत यही है, वो सतह के नीचे जो चल रहा होता है उसे कुरेदते हैं, तो ये आदर्श छवि ये टिकती नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं टिकती। पहली बड़ी दरार दिखती है जब उनका बेटा जॉय टीनेज में अचानक घर छोड़ देता है।
घर छोड़ देता है, कहाँ चला जाता है?
पड़ोस में ही एक रूढ़ीवादी यानी रिपब्लिकन परिवार है, मोनागन परिवार, उनके यहाँ रहने चला जाता है। और ये पैटी के लिए आप सोच सकती हैं कितना बड़ा झटका होगा, जैसे बेटे ने मुंह मोड़ लिया हो।
हाँ, यहीं से इस तनाव शुरू होता है और फिर हमें पैटी की कहानी पता चलती है एक बहुत ही अनोखे तरीके से।
हाँ, उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा पैटी की लिखी आत्मकथा है। नाम है मिस्टेक्स वर मेड, मतलब गलतियां हुई।
लेकिन वो इसे लिखती कैसे है, फर्स्ट पर्सन में?
नहीं, यही तो खास बात है, वो इसे थर्ड पर्सन में लिखती है, जैसे वो अपनी नहीं किसी और की कहानी बता रही हो, खुद से एक दूरी बनाकर।
अच्छा, ये तो दिलचस्प है। ये क्या दिखाता है? मतलब एक तरफ तो शायद हमें उसके मन की गहरी बातें पता चलती होंगी।
हाँ, पता चलती हैं, उसका अतीत, कॉलेज के दिनों की वो बास्केटबॉल खिलाड़ी वाली पहचान, फिर एक दर्दनाक घटना, शायद डेट रेप जिसने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया, फिर वॉल्टर और उसके दोस्त रिचर्ड कैट्स से मिलना। रिचर्ड जो एक रॉक म्यूजिशियन है, आकर्षक है लेकिन थोड़ा अस्थिर।
और वो चुनती है वॉल्टर को, स्थिर भरोसेमंद वॉल्टर।
बिल्कुल, रिचर्ड के बजाय वॉल्टर को। लेकिन इस थर्ड पर्सन आत्मकथा पर कितना भरोसा किया जाए, क्या ये सच है या पैटी का सच का अपना वर्जन, ये सवाल बना रहता है।
सही कहा। और वॉल्टर को चुनने के बाद पैटी की जिंदगी एक गृहिणी और माँ के रोल में सिमट जाती है।
हाँ, और सालों बाद उसे लगता है कि उसकी अपनी पहचान, वो कहीं खो गई है। एक दबी मिसी बेचैनी, असंतोष, वो उसके अंदर बढ़ता रहता है।
और इसी दौरान वॉल्टर क्या कर रहा है, वो भी बदल रहा है।
हाँ, वॉल्टर अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ देता है, उसका पैशन है पर्यावरण। वो एक दुर्लभ चिड़िया है, सेरुलियन वॉर्बलर, उसे बचाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करता है।
इरादा तो नेक है।
नेक है, बिल्कुल, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट में इतना डूब जाता है कि उसे पैटी की तरफ, उसकी जरूरतों की तरफ देखने का वक्त ही नहीं मिलता, या आदर्शवाद और निजी जिंदगी का टकराव दिखता है।
वो अपने मिशन में खो गया है।
बिल्कुल, एक मसीहा की तरह। और पैटी, वो और अकेली हो जाती है। बेटा जॉय, वो भी अलग रास्ते पर है, मुनाहन परिवार के करीब जा रहा है उनकी बेटी कोनी के साथ, और पैसे कमाने के लिए वो इराक युद्ध से जुड़े कुछ कह सकते हैं कि नैतिक रूप से संदिग्ध कामों में पड़ जाता है।
तो परिवार बिखर रहा है, सब अपनी अपनी दिशा में।
हाँ, और इसी बिखराव, इसी अकेलेपन के माहौल में पैटी की जिंदगी में रिचर्ड कैट्स लौटता है,
वही रॉकस्टार दोस्त।
हाँ, रिचर्ड। अब वो एक सफल इंडी रॉक म्यूजिशियन है, लेकिन शायद उतना ही अकेला और भावनात्मक रूप से दूर।
और उनके बीच पुरानी कशिश,
वो कशिश एक अफेयर में बदल जाती है। पैटी को लगता है शायद यही है वो आज़ादी, वो जुनून जिसकी उसे तलाश थी, ये उसके लिए एक तरह का एस्केप है।
लेकिन ये एस्केप कहाँ ले जाता है?
ये उसे वॉल्टर से दूर ले जाता है, वो रिचर्ड के साथ रहने चली जाती है। लेकिन फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट।
क्या होता है?
वॉल्टर को पैटी की वो आत्मकथा मिल जाती है, मिस्टेक्स और मेड।
ओहो, और वो उसे पढ़ लेता है?
हाँ, और उसमें पैटी ने सब लिख दिया था, अपने दिल की बातें, रिचर्ड के लिए अपनी भावनाएं, शादी में महसूस होती घुटन, सब कुछ। वॉल्टर ये पढ़कर बिल्कुल टूट जाता है।
जाहिर है।
उसका दुख फिर भयानक गुस्से में बदलता है। नतीजा, एक जोरदार टकराव और शादी का अंत।
तो यहाँ उपन्यास अपने मूल सवाल पर लौटता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। पैटी को आज़ादी मिली, वॉल्टर अपने काम में आज़ाद है, जॉय अपनी राह चुनने में आज़ाद, पर क्या ये आज़ादी उन्हें खुशियाँ देती है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। परिणाम तो बहुत कड़वे होते हैं। वॉल्टर डीसी चला जाता है, अपने वॉर्बलर प्रोजेक्ट में और भी ज्यादा जुनून से लग जाता है।
लेकिन वो नैतिक रूप से भटक जाता है ना?
हाँ, बुरी तरह। अपने प्रोजेक्ट के लिए जमीन हासिल करने के लिए वो एक बड़ी कोयला कंपनी से समझौता कर लेता है, और बदले में उनकी विनाशकारी माइनिंग प्रैक्टिस, वो जो पहाड़ों को उड़ा जाते हैं, उसका समर्थन करने को तैयार हो जाता है।
ये तो उसके अपने ही आदर्शों के खिलाफ है। आदर्शवाद जब अंधा हो जाए।
बिल्कुल, यही दिखाता है। और पैटी, रिचर्ड के साथ क्या होता है? क्या उसे वो पैशनेट जिंदगी मिलती है?
मुझे शक है।
आपका शक सही है। रिचर्ड के साथ रहने की असलियत वो कल्पना से बहुत अलग थी। रिचर्ड तो कलाकार है, अपनी दुनिया में मगन रहने वाला। पैटी का सपना टूट जाता है।
और फिर?
ठीक और मोड़। खुद रिचर्ड को यह एहसास होता है कि वो पैटी के लिए ठीक नहीं है, और पैटी की असली जगह वॉल्टर के पास ही है। वो उसे वापस भेज देता है एक तरह से।
अच्छा, ये रिचर्ड का एक अलग पहलू है।
हाँ, तो जिसे वो आज़ादी समझ रहे थे, वो असल में अकेलापन और नैतिक पतन लेकर आई। फ्रांजन का वो कोट याद आता है कि असीम स्वतंत्रता का सपना देखने वाले सपना टूटने पर दुनिया से नफरत करने लगते हैं।
हाँ, वॉल्टर के साथ यही होता है। उसका पतन तो सार्वजनिक होता है ना?
जी, जब कोयला कंपनी वाला मामला खुलता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपा खो देता है, और दुनिया की बढ़ती आबादी पर एक बहुत ही गुस्से वाला मानव विरोधी भाषण देता है।
और फिर वो मजाक का पात्र बन जाता है।
बिल्कुल, सारी इज्जत चली जाती है। उधर जॉय, जो कोनी से शादी कर चुका है, पैसा कमा रहा है, उसे भी धीरे धीरे एहसास होता है कि यह सब कितना खोखला है। परिवार को जो दुख दिया, उसका एहसास।
और पैटी?
पैटी अकेली है, एक स्कूल में काम कर रही है, और शायद पहली बार किसी मर्द के सहारे के बिना अपनी जिंदगी खुद बना रही है।
तो ये सबके लिए एक तरह से हिसाब बराबर करने का समय है, अपनी अपनी फ्रीडम की कीमत चुकाने का।
हाँ।
लेकिन क्या सब बिखर ही जाता है?
नहीं, उपन्यास कुछ साल आगे बढ़ता है। किरदारों में अब थोड़ी, कह सकते हैं, विनम्रता आ गई है। अपनी गलतियों से सीखा है उन्होंने।
अच्छा।
वॉल्टर पब्लिक लाइफ से हटकर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जॉय अपने पिता से रिश्ते सुधारने में लगा है।
और पैटी और वॉल्टर?
उनका दोबारा मिलना होता है, लेकिन ये बहुत शांत, गहरा और मार्मिक मिलन है। अब वो पुराना जुनून या कड़वाहट नहीं है, उसकी जगह एक समझ है, करुणा है। उन्होंने स्वतंत्रता के सबक सीख लिए हैं, और अब साथ रहने का एक नया, ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा माफ करने वाला तरीका ढूंढ रहे हैं। ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, पर यह रिश्तों की असलियत दिखाता है, अपूर्ण पर टिके रहने वाले।
ये किरदार वाकई बहुत जटिल गढ़े रहे हैं। पैटी, जो उपन्यास के केंद्र में है, उसका पूरा सफर, एक एथलीट से माँ, फिर संकट में फंसी पत्नी, और आखिर में खुद पर निर्भर एक औरत, ये पहचान की तलाश कितनी उलझी हुई हो सकती है।
हाँ, और उसका वो आत्मकथा लिखना, भले उसके नतीजे बुरे हुए, पर शायद वो खुद को समझने का उसका तरीका था। और अंत में जो उसे मिलता है वो आत्मविश्वास है, जो किसी और पर नहीं, खुद पर टिका है।
बिल्कुल। और वॉल्टर का आदर्शवाद शुरू में कितना अच्छा लगता है, लेकिन कैसे वो आत्ममुग्धता और दूसरों की तरफ अंधेपन में बदल जाता है। वो वॉबलर चिड़िया भी कितनी प्रतीक बन जाती है।
हाँ, प्रकृति की सुंदरता के प्रतीक, और उन अमूर्त आदर्शों की भी, जिनके पीछे भागते हुए इंसान अपनों को भूल जाता है। उसका पतन और फिर वापसी, ये दिखाती है कि आदर्शों को भी जमीन पर रखना कितना जरूरी है।
और रिचर्ड कैट्स, जो शुरू में कूल लगता है, हर बंधन से मुक्त, वो भी समझता है कि ऐसी आज़ादी भी खालीपन ला सकती है। और उसका वो कहना कि कूल होने से बेहतर है दयालु होना, ये दिखाता है कि वो भी बदला है।
जी, और बेटा जॉय, जो अपने माँ बाप के लिबरल मूल्यों से भागता है, पूंजीवाद अपनाता है, वो भी अंत में परिवार की तरफ लौटता है। ये दिखाता है कि जड़ें कितनी मजबूत होती हैं।
तो स्वतंत्रता के अलावा उपन्यास और भी कई थीम छूता है, जैसे प्यार और शादी की हकीकत। ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि लंबे रिश्ते में प्यार के साथ साथ बोरियत, नाराजगी, समझौते, सब कुछ होता है। बर्गलैंड्स का रिश्ता यही दिखाता है कि रिश्ता शायद टिकता है माफी पर, साझे अतीत पर, और मुश्किल वक्त में साथ बने रहने के चुनाव पर।
और वो आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता वाली बात भी, वॉल्टर और जॉय।
हाँ, एक आदर्शों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, दूसरा व्यावहारिकता के नाम पर नैतिक समझौते करता है। शायद सच कहीं बीच में, संतुलन में।
एक और चीज जो फ्रेंजिन बहुत खूबी से करते हैं वो है निजी जिंदगी को बड़े सामाजिक राजनीतिक माहौल से जोड़ना। वॉल्टर का गुस्सा, जॉय का इराक में बिजनेस, पर्यावरण का मुद्दा।
हाँ, वो दिखाते हैं कि ये बड़े मुद्दे सिर्फ अखबारों की खबरें नहीं हैं, ये हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में घुस आते हैं। पर्सनल इज पॉलिटिकल।
अगर लेखन शैली की बात करें तो फ्रेंजिन का गद्य कैसा है?
सघन है, बौद्धिक है, वाक्य अक्सर लंबे और जटिल होते हैं जो किरदारों की सोच की उलझन को दिखाते हैं। कहानी कई नजरियों से कही जाती है और बीच में पैटी की आत्मकथा एक अलग रंग भरती है।
और भाषा में एक तरह की विडंबना है शायद।
हाँ बिल्कुल, पात्र जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें अक्सर फर्क होता है। उनके इरादे नेक हो सकते हैं पर नतीजे कुछ और निकलते हैं। व्यंग का भी इस्तेमाल है, चाहे वो लिबरल तबका हो या कॉर्पोरेट जगत।
और प्रतीक तो है ही, वर्बलर चिड़िया, जनसंख्या का मुद्दा, वो सैंट पॉल का पड़ोस।
जी, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं। वॉर्बलर नाजुक प्रकृति का प्रतीक है जिससे बचाने के लिए वॉल्टर इंसानों से दूर हो जाता है। जनसंख्या पर उसका गुस्सा उसके मानव द्वेष को दिखाता है।
तो कुल मिलाकर फ्रीडम पढ़ना कैसा अनुभव है? आसान तो नहीं लगता?
नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। एक गहरा, कभी कभी असहज कर देने वाला अनुभव है। आप किरदारों से पूरी तरह सहमत नहीं हो पाते पर उन्हें समझ पाते हैं। उनकी कमजोरियों में शायद अपनी झलक दिखती है। तो ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, स्वतंत्रता के बारे में, प्यार, शादी, परिवार, आदर्श, समझौते, इन सब के बारे में। ये जवाब नहीं देता पर सवाल बहुत अच्छे पूछता है।
तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची स्वतंत्रता शायद भारी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाने में नहीं है,
बल्कि
शायद अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को सोच समझकर स्वेच्छा से चुनने और उन्हें निभाने में है। अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करने में ही शायद असली मुक्ति है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।